ओम शांति। चीन में एक बहुत पुरानी कहानी का वर्णन है, जिसमें एक कन्या जिसका नाम होता है ली ली, ली ली, तो उस ली ली का विवाह हो जाता है और वो अपने ससुराल आती है। कुछ दिन सब ठीक चलता है, पर कुछ ही दिनों के बाद उसका और उसकी सास का रोज झगड़ा चालू हो जाता है। हर दिन झगड़ा, वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए वहां रहना मुश्किल हो जाता है। और उस घर में तीन ही लोग थे, वो, उसका पति और उसकी सास। वो इतनी परेशान हो जाती है रोज के झगड़े से कि एक दिन सोचती है मैं मायके चले जाऊं, और मायके चली जाती है और वहां पर एक वैद्य से मिलती है और उसे अपनी समस्या बताती है कि मैं क्या करूं, कुछ ऐसा दो कि मेरी ये जो सांस है ना, ये खत्म हो जाए, क्योंकि इतना परेशान कर रखा है उसने। तो वो वैद्य कहता है कि तुम्हारे पिताजी तो मेरे बड़े पुराने मित्र हैं और तुम्हारी मदद मैं अवश्य करूंगा। मैं एक ऐसी जड़ी बूटी बना के देता हूं कि रोज तुम थोड़ा थोड़ा अपनी सांस के भोजन में डालते जाना, और ये जो जड़ी बूटी है जहर है, और धीरे 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 वो खत्म होती जाएगी, स्लो पॉइजनिंग, और किसी को शक भी नहीं होगा कि ऐसा हुआ है। पर हां, तुमको इस बीच में थोड़ा दिखावा करना पड़ेगा जरूर, थोड़ा सा ढोंग, रोज उसके लिए कुछ ना कुछ नए नए व्यंजन बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर से उसके साथ अच्छे से बात करना, मीठा मीठा बोलना, बाकी अपना काम जारी रखना, जो औषधि मैं दे रहा हूं वो डालने का। तो वो बहुत खुशी खुशी से वापस आती है और रोज भोजन में थोड़ा थोड़ा डालने लगती है वो जड़ी बूटी, और उसके साथ थोड़ा ऊपर से मीठा मीठा बोलने लगती है, उसकी आज्ञा मानती है, उसकी थोड़ी सी सेवा करती है, स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है रोज। और ऐसा करते करते दोनों के संबंध बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। वो तो दिखावे से चालू करती है, परंतु जो रोज झगड़ा होता था वो झगड़ा खत्म। अब तो सास भी उसको बहुत प्यार करने लगी है, और पर अब उसको चिंता होने लगती है कि मैंने इसके भोजन में रोज जो जहर डाला, अब तो ये मर जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि ये मर जाए, क्योंकि अब तो बहुत प्यारी लगने लगी है, बहुत अच्छी लगने लगी है। तो वो घबराती है और कहती है मुझे अर्जेंट माई के काम है, मुझे जाना है, और घर आती है और उस वैद्य के पास जाती है और उसको आप बीती सुनाती है कि ऐसे ऐसे हो गया, आपने जो जहर दिया था वो तो मैंने सही में रोज डाला, 6 मास हो गए रोज डाल रही हूं, और अब तक तो उसका असर धीरे धीरे होने लगेगा, कैसे भी करके ऐसा कुछ अभी फॉर्मूला, कोई औषधि दो कि जहर का असर खत्म हो जाए। तो वो वैद्य कहता है वो जहर था ही नहीं, वो तो स्वास्थ्यवर्धक औषधि थी, जहर तो तुम्हारे दिमाग में था, जहर तुम्हारे दिमाग में था, जब तक वो जहर ना निकले तब तक तुम ये सोचती थी कि इसको मार दो किसी जहर से, चीन में ये कहानी बड़ी प्रसिद्ध है, लीली की कहानी, जो स्वयं सही राह पर चलते हैं और दूसरों को सही राह दिखाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? स्लोगन क्या है आज का? जो सही राह पर खुद चलते हैं और दूसरों को सही राह दिखाते हैं, उनको क्या कहते हैं? कौन सा लाइट हाउस? सच्चा सच्चा लाइट हाउस। जो भटक रहा है उसको राह दिखाना, जो डूब रहा है उसको बचाना। डिजिटल नगरी की भटकती गलियों में जो खो गए हैं, उनको वापस पुरुषार्थ की डगर पर लाना। माया की गलियों में जो खो गए हैं, उन्हें वापस वहां से निकालकर राम इंटरनेशनल हाईवे पर लाना। अर्थात सच्चा सच्चा लाइट हाउस। जो स्वयं तो सच्चे मार्ग पर चले, सही मार्ग पर, परंतु साथ साथ दूसरों को भी इसी मार्ग पर लाए, इसके लिए चाहिए ज्ञान की पराकाष्ठा। क्या चाहिए? ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की ऊंचाई, ज्ञान की संपूर्णता, ज्ञान की परिपक्वता। संपूर्ण निश्चय स्वयं भगवान के महावाक्य है। पुरानी दुनिया और पुरानी देह को छोड़ो, ये निश्चय। तो क्या हम ऐसे लाइट हाउस बने कि हमारी वजह से दूसरों को राह मिले, मार्गदर्शन मिले? ऐसे पथ प्रदर्शक भव जिनका जीवन इतना उदात्त श्रेष्ठतम है कि जिसे देखकर अंधकार में जो आत्माएं भटक रही है उन्हें राहत मिले। कल की अव्यक्त वाणी थी, आत्माएं भीख मांग रही है। किस लिए? मुक्ति के लिए। कोई घर पर पुकार रही है, कोई मंदिरों में जा रही है, और कोई तीर्थ स्थान पर जा रही है। आह्वान कर रही है तुम्हारा। और देविया क्या कर रही है मंदिरों में बैठकर? मूड ऑफ के कौन से आंसू? गरम गरम आंसू बहा रही है। भक्त बाहर खड़ा है, हे मां हे मां हे मां, रक्षा करो, हे पापहारिणी हे पापनाशिनी, हे भक्त वत्सल मां, हे जगत कल्याणी मां, हे जगत जननी मां, हे अन्नपूर्णा मां, हे असुर संहारिणी मां। और मंदिर का पर्दा खुलता है और मां नाराज और उदास और आंसू बहा रही है। कौन से आंसू? मूड ऑफ के गरम गरम आंसू। भक्त भी घबरा जाते, घबराते ही नहीं, भक्त अपना दुख भूल जाते और अपने जेब में से रुमाल निकालकर मां को देते हैं, पहले अपने आंसू पोछो फिर हमारे आंसू पोछना। मां बहुत दुखी है, दुर्गा मां दुखी है, क्योंकि बाजू के मंदिर की काली मां ने उसके कुछ कहा। इसलिए मूड ऑफ। संसार दुखी है, और यदि हम भी दुखी तो उनमें और हम में क्या अंतर? उनके दुख के आंसू कौन पहुंचेगा? सारा संसार ही दुखी है, यहां वहां दुख भरा पड़ा है संसार में। कोई एक घर नहीं जहां दुख नहीं, कुछ ही गिनी चुनी आत्माएं हैं जो दुख से छूटी है। इसलिए कल बाबा ने कहा, चेक करो कि हम स्वयं कितना मुक्त हुए हैं। जो मुक्त है वही मुक्त कर सकते हैं, जो जागृत है वही जागृत कर सकते हैं। तो कल की जो अव्यक्त वाणी थी उसका जो दूसरा भाग था शक्तियों के ऊपर जो मुरली थी उसकी हम चर्चा करेंगे। वो कोई एक मुरली नहीं है, ढेर सारी मुरलियों से निकाले हुए महावाक्य थे, कोई इधर से कोई उधर से, हैंडलिंग पावर भी उसमें डाल दिया तो पावरफुल ब्रेक भी उसमें डाल दिया, तो कंट्रोलिंग पावर भी डाल दिया तो रूलिंग पावर भी डाल दिया, तो शीतलता की शक्ति भी उसमें डाल दी। कोई एक मुरली नहीं थी वो, कौन सा भात, बीसी बेला भात, ढेर सारे चीजें थी उसमें। तो उस पर हम थोड़ी चर्चा आज करेंगे, क्या क्या थी उसमें बातें, पहले आप बताएंगे फिर हम चर्चा करेंगे। दूसरा भाग, पहला भाग नहीं, दूसरा भाग क्या था, मन बुद्धि और संस्कार को क्या करो। संस्कार के लिए बोला, संस्कार नाच नचाने वाले ना हो, और माताओं की तरफ से कल की मुरली सुनी है ना सबने। दूसरा भाग और पांचवें थोनर और क्या, तो उसमें सात आठ बातें थी। वो मुरली शक्तियों के ऊपर है, शक्तियां भारत संस्कृति में एक पुरातन कथानक सुनाते हैं कि सारे देवता एकत्र हो गए और सोचने लगे मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए ऐसी कुछ शक्ति है, शक्ति आए उन्हें कहां छिपा कर रख दिया जाए ताकि मनुष्य उन तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर पहुंच गया तो शायद गलत उपयोग कर सकता है। तो मीटिंग हुई देवताओं की, किसी देवता ने कहा गुफा के अंदर रख दो ताकि मनुष्य पहुंच ना सकेगा, पर दूसरों ने कहा नहीं नहीं मनुष्य वहां पर पहुंच जाएगा, किसी ने कहा ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी पर छिपा के रख दो, किसी ने कहा आसमान के ऊपर रख दो, किसी ने कहा यहां सब जगह मनुष्य पहुंच जाएगा क्यों ना समुद्र की गहराई में छुपा दो, पर फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं मनुष्य वहां पे भी पहुंच जाएगा। फिर एक थोड़ा बूढ़ा देवता था, बूढ़ा, उसने आके कहा ये जितनी जगह तुमने बताई है मनुष्य सब जगह पहुंच जाएगा, क्यों ना हम ऐसा करें कि मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाली जितनी शक्तियां हैं मनुष्य के ही गहरे मन में अंदर छिपा के रखते, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है चीजों को कहां ढूंढता है, बाहर, अंदर नहीं ढूंढता है। सारी शक्तियां अवचेतन मन में समा दो उसी गहरे तल में, ताकि वो दिन रात शक्तियों को बाहर ढूंढते रहेगा। हां उनमें से कोई कोई होगा जो ये जान जाएगा कि बाहर की खोज निरर्थक है, बाहर कुछ भी मिलने वाला नहीं है, किसी व्यक्ति में, किसी संबंध में, किसी साधन में, किसी वस्तु में, किसी पदार्थ में, किसी स्थान में, किसी वैभव में, किसी फैशन में, किसी डिजिटल डिवाइस में, किसी भोजन में, किसी साइट सीइंग में, किसी फोटोग्राफी में, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, किसी सेलिब्रेशन में, जो कुछ मिलना है अंतरतम में, हृदय की गहराई में, अंतस में, वहीं सारी शक्तियां समाई हुई है। तो इसमें बाबा ने आठ से नौ बातें बताई है। सबसे पहली बात शीतलता की शक्ति, दूसरी बात कंट्रोलिंग पावर, तीसरी बात रूलिंग पावर, चौथी बात पास विथ ऑनर, छठवीं बात पावरफुल योग की परिभाषा, छठवीं बात पावरफुल ब्रेक क्या होता है। सातवीं बात, सेकंड में फुल स्टॉप, सेकंड में फुल स्टॉप। उसी के साथ समय समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति। उसके बाद सेकंड में बर्थ कंट्रोल और लास्ट बात हैंडलिंग पावर। इतने शब्द आए हैं मुरली में। है छोटी सी मुरली परंतु पावरफुल शब्द आए हैं। तो हम एक एक करके चालू करेंगे। सबसे पहले बताइए शीतलता की शक्ति। क्या करो इस शक्ति से? मन को शीतल करो। और क्या करो शीतलता की शक्ति से? वो तो रूलिंग पावर से। बोल और संकल्प, इन दोनों को क्या कर दो? शीतल और धैर्यवत। ये जो मुरलियों में आता है या कोर्स में हम कहते हैं, या आठ शक्तियां है, और फिर हम कहते हैं इनका आह्वान करो। ये आह्वान करो क्या होता है? जैसे शीतलता की शक्ति है, इस शक्ति से धैर्यवत हो जाओ, बोल और संकल्प को शीतल कर दो। शक्ति जैसे कोई व्यक्ति है, शक्ति जैसे कोई व्यक्ति है, उस शक्ति का आह्वान। क्या किसी शक्ति का आह्वान करने से शक्ति आ जाएगी? ये भी एक प्रश्न है। परंतु शास्त्रों में दिखाया हुआ है, यदि आह्वान किया जाए तो आ जाएंगी। जैसे महाभारत में दिखाया है, दुर्वासा कुंती के पास आता है, वो कन्या है, बहुत सेवा करती है, प्रसन्न होता है, वरदान देता है कि इसके बाद मैं तुम्हें जो मंत्र दे रहा हूं उस मंत्र से तुम जिसको बुलाओगी वो आ जाएगा, तुम्हें केवल आह्वान करना पड़ेगा। वो चला जाता है, उसे सत्य नहीं लगता ये, तो वो ट्राई करती है, सूर्य को देखती है और सूर्य का आह्वान करती है, आ जाओ। तो सूर्य प्रकट होता है, बोलता है क्या चाहिए? वो कहती है मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, गो बैक। वो कहते हैं आई कांट, कुछ तो लेना पड़ेगा। अचूक मंत्र है, अमोघ मंत्र है। और महाभारत के 10 कारण दिए है, उसमें से एक बीज सौंप के चला जाता है कर्ण। तो कैसे आह्वान किया उसने? उसी तरह शक्तियों का आह्वान करना है। क्रोध, संताप, आवेग, आवेश, पैशन, एक्साइटमेंट, किस शक्ति का आह्वान करना है? हे शीतलता की शक्ति, आ जाओ। तो जैसे सूर्य देव आके प्रकट हो गया, वो शक्ति आके प्रकट हो जाएगी हमारे सामने एकदम प्रकाशमान। शक्तियों का आह्वान। वैसे तो 8 शक्ति है, आप सबको काम दे रहे हैं अभी होमवर्क। ऐसी कितनी शक्तियां निकालेंगे? 60 शक्तियों की लिस्ट निकालनी। 60 कितनी शक्तियों की? 60 शक्तियों की। ये काम है आपके लिए होमवर्क एक हफ्ते में। और ये सारी शक्तियों का वर्णन यहां वहां आया है, और उन 60 शक्तियों में से ये जो 8 शक्तियां, ये नहीं होनी चाहिए, ये दूसरा, इसको हटा दो। इसके अतिरिक्त उदाहरण सत्यता की शक्ति, उदाहरण महसूसता की शक्ति, उदाहरण संग्रह करने की शक्ति और संग्राम करने की शक्ति, इस पर मुरलियां चली है। बहुत सारी मुरलियां है अलग अलग शक्तियों पर। 8 शक्तियां छोड़कर जो दूसरी शक्तियां है, और रोज अभ्यास करना है दिनचर्या में शक्तियों का आह्वान। जैसे यहां बताया, शीतलता की शक्ति, हे शीतलता की शक्ति आ जाओ, हे शीतला मां, शीतला देवी। किस चीज की देवी है शीतला माता? मंदिर देखा है शीतला मां का? किस चीज की देवी है? क्या करती है? उसके हाथ में क्या है? झाड़ू। बीमारी, बीमारी को ठीक करती है वो, स्वच्छता की देवी है। ये दूसरा काम आपके लिए। शीतला मां का क्या महत्व है? उसके चार हाथों में कौन सी चार चीजें हैं? आबू में है कोई मंदिर? शीतला मां का नहीं है। तो सबसे पहली शक्ति है शीतलता की शक्ति। इस शक्ति का आह्वान करो, और हर संकल्प और हर बोल कैसा हो? शीतल और धैर्यवत। ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही कर दिया, बोलू नहीं बोलू, नहीं बोलना चाहिए पर बोल दिया, शब्द तीर है, होठ कमान है, इससे निकल गया, वापस नहीं आता। तो सबसे पहली शक्ति है शीतलता की शक्ति, इसको धारण करना है। दूसरी शक्ति है कंट्रोलिंग पावर। बाबा ने कहा राज दरबार लगाओ, यहां रिफाइंड बन जाओ तो वहां फाइन नहीं बनना पड़ेगा, यहां पर कंट्रोल करो, दरबार लगाओ, मंत्री कर्मचारी उन सब का दरबार लगाओ। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर में क्या अंतर है? रूलिंग पावर किसको कहा जाता है? कंट्रोलिंग, कंट्रोल अर्थात नियंत्रण, रूल अर्थात शासन करना, शासन करना, किसी के ऊपर रूल करना। कंट्रोलिंग पावर स्थूल कर्मेंद्रियों के लिए ज्यादा प्रयुक्त किया जाता है। वैसे तो दोनों को बाबा साथ साथ बोलते हैं, परंतु स्थूल कर्मेंद्रिय, आंख क्या देख रही है, कान क्या सुन रहे हैं, मुख क्या बोल रहा है, जिह्वा, स्पर्श, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये सब जो है वो कंट्रोल करने जैसी चीज है। रूलिंग पावर अर्थात सूक्ष्म कर्मेंद्रिया जो है, मन बुद्धि संस्कार, उनको वश में करना, उनके ऊपर शासन करना, वो रूलिंग पावर के लिए प्रयोग किया जाता है। वैसे दोनों को समानार्थी रूप में बाबा प्रयोग करते हैं, कभी कभी दोनों को साथ साथ ही बोलते हैं, परंतु एक स्थूल के लिए एक सूक्ष्म के लिए। तो बाबा ने कहा कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोल करना। एक सेकंड में स्टॉप कहा, स्टॉप। एक सेकंड में कर्म तो कर्म ही होगी, एक सेकंड में परमधाम तो परमधाम। तो कंट्रोल, तीसरा है रूलिंग। इसके बाद हम फिर आएंगे इस पे कि कंट्रोल कैसे करें। फिर है रूलिंग, रूल अर्थात किस पर रूल करना, मन, मन मत मिक्स ना, बुद्धि यथार्थ निर्णय दे, और संस्कार क्या करते हैं, नाच नचाते, बंदर का नाच, अंदर की ही कमजोरी की जो रचना है उसको कल क्या नाम दिया, कल की अव्यक्तवाणी में पार्ट वन, मिकी माउस, और दो नाम है बिच्छू टिंडन, ये सब है। बिच्छू टिंडन बनकर खुद ही काटते हैं, काटते रहते हैं, और वो कमजोरी, वो समस्या क्या है, हमारे मन की कमजोरी ने रूप लिया है, बाहर प्रकट हुई है व्यक्ति परिस्थिति के रूप में, पर है वो मन के अंदर की कमजोरी, कोई संस्कार, वही बाहर निकल रहा है, कमजोरी बनकर और परिस्थिति और व्यक्ति दिखाई दे रहे और समस्या लग रही है, पर समस्या है नहीं। इसके लिए बाबा ने कहा समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप, ये मधुबन से संकल्प करके जाओ, दृढ़ संकल्प। मधुबन भूमि को 5 नाम दिए, कौन कौन से? माताओं की तरफ से वरदानी भूमि, परिवर्तन भूमि, श्रेष्ठ संघ की भूमि, चौथा सर्व प्राप्ति की अनुभूत अनुभव करने की भूमि, और कल की मुरली से। कल की मुरली की शुरुआत क्या थी? मधुबन क्या है? सबसे पहला वरदानी भूमि, परिवर्तन भूमि, श्रेष्ठ संघ की भूमि, सर्व प्राप्ति की अनुभव करने की भूमि, और समर्थ भूमि। ये 5 नाम दिए। समर्थ भूमि में मैं आकर कितना समर्थ बनी हूं, बना हूं। परिवर्तन भूमि में मैं आकर कितना मैंने स्वयं को परिवर्तन किया है। श्रेष्ठ संघ की भूमि में रहकर कितना संघ का रंग लगा है, स्वयं से स्वयं प्रश्न पूछने। यहां पर सेवा कर रहे हैं, किस भूमि में सेवा कर रहे हैं? वरदानी भूमि, कौन से वरदान अंदर लिए हैं? प्यूरिटी की पर्सनैलिटी, रूहानी पर्सनैलिटी, ज्ञानी योगी की पर्सनैलिटी कितने बने हैं? वरदानी भूमि है ना, लाइट हाउस, सच्चा सच्चा कितने बने हैं? तो रूल करना है किस पर? संस्कारों पर, बुद्धि पर और मन पर। मन यहां वाना भटके, मन मत ना मिक्स हो, बुद्धि स्थिर और यथार्थ निर्णय दे। इसके लिए रोज एक वरदान बाबा से लेना है, अमृत वेला दिव्य बुद्धि का, कि हमारी बुद्धि दिव्य रहे। कोई ऐसा काम ना कर दे, कोई ऐसा निर्णय ना ले ले कि जिससे पश्चाताप हो, दुख हो, ये नहीं करना चाहिए था फिर भी कर दिया। तुम बच्चों को 63 जन्मों के पाप भस्म करने में जितना समय नहीं लगता, उतना समय नहीं लगता जितना ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए पाप को भस्म करने में। ब्राह्मण बन गए, श्रीमत को जान लिया, फिर भी उल्लंघन, फिर भी तोड़ा, एक का एक गुना, एक का 100 गुना। इसी मुरली में बाबा ने कहा है व्यर्थ संकल्प के लिए, जैसे व्यर्थ जैसे शुद्ध संकल्प का हिसाब 100 गुना है, 1000 गुना, उसी तरह व्यर्थ का भी हिसाब है। दुखी होना कई गुना, दिल शिकस्त होना, खुशी गायब हो जाना, ये व्यर्थ संकल्प एक किया उसका हिसाब है। तो रूलिंग करना है, कंट्रोलिंग करना, व्यर्थ नेगेटिव विकार, इनकी स्पीड बहुत है, बहुत तेज चलते हैं। सबसे स्लो विचार कौन से हैं? स्वमान, उसके बाद में साधारण, उसके बाद में व्यर्थ थोड़े फास्ट, उसके बाद में निगेटिव उससे फास्ट, उसके बाद में विकार उससे फास्ट, और विकारों में भी सबसे फास्ट काम विकार। ये स्पेक्ट्रम है। स्वमान के विचार एकदम शांत, और जो गाड़ी बहुत फास्ट जा रही है उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, और जो बहुत शांत जा रही है, धीरे जा रही है, उसको तुरंत कंट्रोल किया जा सकता है। तो शीतलता की शक्ति, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, उसके बाद में बाबा ने कहा पास विद ऑनर अर्थात स्वराज्य अधिकारी, उसी के साथ है पास विद ऑनर, एक है पास विद ऑनर। उसी के साथ उसका ज्यादा विस्तार नहीं किया। उसी के साथ है पावरफुल योग की परिभाषा, वो क्या है, योग क्या है, इसके पहले ये जानना जरूरी है योग क्या नहीं है। एक अभी अभी पांडव भवन में क्लास हुई थी इसके ऊपर, योग क्या नहीं है। पर तो पावरफुल योग की क्या परिभाषा दी, एक बाप दूसरा ना कोई, इस एक संकल्प में स्थित हो जाना और कोई दूसरा संकल्प, बाकी सब संकल्प शांत हो गए, इस एक आत्मा और परमात्मा के मिलन की अवस्था में रहना, अर्थात पावरफुल योग। और कोई विचार नहीं, सेवा के विचार आना योग नहीं है, ज्ञान का चिंतन होना यह भी योग नहीं है एक रीति से देखा जाए तो, कोई टॉपिक के बारे में सोचना यह योग नहीं है। योग वास्तविक परिभाषा बीज रूप स्थिति है, आत्मा परमात्मा बस। हां, बाकी जो अवस्थाएं हैं वो अलग अलग अवस्था है, उन अवस्थाओं में योग किया जा सकता है, योग युक्त रहा जा सकता है, पर वो योग नहीं है, उससे विकर्म विनाश नहीं होते। फरिश्ता स्वरूप धारण करना, आत्माओं को सकाश देना, ये सब ठीक है, बाबा से बातें करना, रू रिहान करना, समाचार देना, संबंध निभाना, ये सब ठीक है, पर योग अर्थात वो ज्वालामुखी स्थिति कि जिसमें सब संकल्प शांत हो गए, आत्मा और परमात्मा बस, वो लगभग निर्विचार, निर्विचार तो कोई होता नहीं है, परंतु कम से कम संकल्पों वाली अवस्था है। और बाकी मुरली सुनना, हाँ मुरली सुनते सुनते कोई योगी योग लगा सकता है, वो अलग बात है, पर मुरली सुनना खाली योग नहीं है। जैसे एक जैन मास्टर के पास एक शिष्य जाता है और वो कहता है, मास्टर गुरुजी मैं योग करते करते स्मोकिंग कर सकता हूं क्या? वो कहता है बिल्कुल नहीं, नॉट अलाउड। ऐसे प्रश्न तुमने पूछा कैसे इस आश्रम में? वो जाता है अपने दोस्त से, कहता है गुरु भाई से, गुरु भाई कहता है अब देखो मैं क्या करता हूं। वो जाता है और गुरु से पूछता है, गुरु जी स्मोकिंग करते करते मैं मेडिटेशन कर सकता हूं क्या? वो कहता है बिल्कुल अलाउड, करो, कोई भी कर्म करते समय तुम मेडिटेशन करना तो अच्छी बात है, करो। कोई भी कर्म करते हुए योग में किया जा सकता है, परंतु वो खाली योग नहीं है। नहीं तो इसी भ्रम में हम रहते हैं, हमने मुरली सुन ली, ये कर लिया, वो कर लिया, हम तो योग के चार्ट में वो इंक्लूडेड है, योग अलग। हाँ भले वो सारे कर्म योग युक्त करो, याद में करो, वो अलग बात है। तो पावरफुल योग, और फिर बताया पावरफुल ब्रेक, स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, ये एक बहुत अच्छा अभ्यास है, खुद को रोक देना, ये कर रहे हैं स्टॉप और दूसरी तरफ चालू। अभी अभी ज्ञान का चिंतन कर रहे, इतनी गहराई में जा रहे हैं और बहुत विस्तार ज्ञान का, स्टॉप, एक संकल्प में स्थित, वहां से निकले किसी को ज्ञान समझा रहे हैं, वहां से निकले किचन में जाकर सेवा कर रहे, वहां से निकले तो कहीं जा रहे, ट्रैवल कर रहे, वहां से निकले तो किसी से बात कर रहे, एक सेकंड में स्टॉप स्टॉप, और वहां से सब तरफ से निकले और परमधाम में स्थित, किसी से कोई लेना देना नहीं, सब मरे पड़े, वहां से आए सबसे प्रेम सबसे स्नेह, ऐसी अवस्था, कहीं पर भी अटैच नहीं, निर्मोही, संपूर्ण निर्मोही। अवतार जो होता है उसको किसी में मोह नहीं होता है, जैसे कृष्ण के लिए दिखाया है, मथुरास वृंदावन छोड़ दिया गोकुल, बाद में कभी वापस मुड़ के नहीं देखा, जब तक गोपियों के साथ था गोपियों के साथ था, वहां से निकल गया निकल गया, पाठ पूरा हुआ, बाद में कभी बांसुरी हाथ में ली नहीं, उधर का उधर रहा, आगे का पाठ चालू हुआ, जहां जाता है वहां सब करता है, काम पूरा हुआ आगे निकल गया, किसी में मोह नहीं, किसी में लगाव नहीं, किसी में फंसा हुआ नहीं है, किसी की याद नहीं है उसको, ऐसी अवस्था। तो पावरफुल ब्रेक, आध्यात्मिक ब्रेक प्रणाली, आध्यात्मिक ब्रेक प्रणाली, स्पिरिचुअल ब्रेक सिस्टम। बड़ा स्ट्रांग चाहिए ब्रेक, और ब्रेक को स्ट्रांग रखने के लिए क्या करना पड़ता है? गाड़ी के ब्रेक के लिए क्या करते हैं? थोड़ा उसको चेक करते रहना पड़ता है, ऑयल वगैरह डालना पड़ता है उसमें, नहीं तो ब्रेक लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है। बाबा ने कहा ढीला ना हो, टाइट हो, लीक होता है, बहुत सारी चीजें होती है उसमें, वो कुछ नहीं होना चाहिए। संकल्प का ब्रेक टाइट हो, तो पावरफुल ब्रेक हो, स्टॉप कर सके खुद को। ऐसा नहीं कि मन कह रहा है कि ये करना नहीं चाहिए, फिर भी करते जा रहे, करते जा रहे, करते जा रहे, मन कह रहा है स्टॉप करो इसको, पर वो जो देख रहा है इतना इंटरेस्टिंग है कि रुक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है। इधर रात हो रही है, 10 बज रहे, सोने का टाइम हो गया है, पर 15 मिनट और, 15 मिनट और, 10:30 और 11:15 बज गए, और उधर अमृत वेला फिर 15 मिनट लेट हो गया इधर, तो उसका हल्का फुल्का तो असर आएगा उधर, कुछ तो आएगा। परंतु संकल्प शक्ति बहुत है, खुद को जगा के रखेंगे, आंखें खोल के फाड़ फाड़ के देखेंगे बाबा को, पर आंखें खोल के भी नींद, दो प्रकार की नींद है, एक आंखें बंद करके नींद, एक ऐसी नींद, देख रहे हैं पर नींद में है, आमने से कोई चला गया तो पता भी नहीं चलता है, क्योंकि योग इतना पावरफुल है कि हम तो योग में थे एकदम मगन याद में, इधर का असर उधर, सूक्ष्म का असर होता है। जहां जहां सूक्ष्म धारणाएं टूटेगी, वहां वहां सूक्ष्म अनुभवों से आत्मा वंचित हो जाएगी। सूक्ष्म अनुभूतियों के लिए सूक्ष्म तपस्या चाहिए, गहन अनुभूतियों के लिए गहन तपस्या चाहिए। उसके बाद में बताया सेकंड में फुल स्टॉप, जो कल हुआ था उस पे उसका आज पर कोई असर ना हो। कल भी क्लास में कहा था, रात्रि क्लास में 3 कर्तव्य करने हैं, उस दिन भी कहा था, मास्टर ब्रह्मा सुबह, दिन भर मास्टर विष्णु, और रात में मास्टर शंकर। दिन सुबह सुबह उठ के मास्टर ब्रह्मा का कर्तव्य करना, अर्थात मुरली के कुछ कुछ वाक्य ले लेना, याद कर लेना, और कुछ कुछ श्रेष्ठ संकल्प करना, रचना करनी अच्छे संकल्पों की, और दिन भर उनकी पालना करना, अर्थात रिविजन करते रहना, देखते रहना उनको, याद करते रहना उनको, निकालना और पढ़ते रहना बीच बीच में, और रात में चेकिंग करना कि इतना सब करने के बाद क्या क्या व्यर्थ चला, और यदि व्यर्थ चला तो उसको नष्ट कर देना, समाप्त कर देना। एक दिन का असर दूसरे दिन पर ना चले, नहीं तो आज किसी ने हमसे कुछ कह दिया, उसका आज के आज ही पूरा कर दो, उसको माफ कर दो, माफी मांग लो, जो करना है करो। योग में अगर चलता भी है तो दूसरे दिन अमृत वेले से पहले वो खत्म हो जाए, या अमृत वेले के बीच में उसको खत्म कर दो, अमृत वेले तक उसको खत्म कर दो। दिनचर्या में ना चले वो बात, वो डिस्टर्बेंस जो आज हुआ, नहीं तो संस्कार बनते जाएगा और संस्कार नाच नचाएंगे, और संस्कारों को कंट्रोल करना सबसे कठिन काम है, मन से भी कठिन काम, मन को कंट्रोल करना संकल्पों से कठिन, संकल्पों से भी सूक्ष्म संस्कार है, क्योंकि संस्कार ऑटोमेटिक है, संस्कार अर्थात एडिक्शंस, संस्कार अर्थात हैबिट्स जो बहुत डीप है, डीप रूटेड, अपने आप काम करते हैं, हम तो सोचते भी नहीं, अपने आप होता है सब कुछ, हैबिट बन गई है, आदत हो गई है। तो पावरफुल ब्रेक, और उसके बाद में बताया सेकंड में फुल स्टॉप, और फिर बताया पावरफुल बर्थ कंट्रोल करो, बर्थ कंट्रोल। एक बार रचना रची तो पालना तो करनी पड़ेगी, बाबा ने रचना रच दी, मन में कोई लगाव का संकल्प आ गया, किसी की याद ही आ गई, किसी माता को अपना बेटा ही याद आ गया सुबह सुबह, और दिन भर उसकी याद आती रही, जो चीज सुबह सुबह याद आ गई वो पूरा दिन भर चलता है। सुबह सुबह कोई अच्छा गीत याद आ गया वही गुनगुनाता रहता है व्यक्ति दिन भर अज्ञात में। व्यर्थ याद आ गया वो व्यर्थ सारे दिन भर याद आता है। इसके लिए सुबह का समय हमारे वश में है, हम जो सोचेंगे हम डिसाइड करें क्या सोचना है। एक अभ्यास, सबके पास मोबाइल तो है, उठते ही यह अभ्यास हमने कई महीनों कई सालों तक किया कई बार, कि ये जो वरदान होता है मुरली का उस दिन का, उठते ही वरदान पढ़ लो अंदर का मैटर और उसी पर योग करना। फिर जो वरदान है उस दिन का, खाली वरदान उठते ही पहला काम गुड मॉर्निंग और वरदान पढ़ लिया, और जब तक अपने कमरे से योग के कमरे तक नहीं पहुंचते उसी वरदान को ड्रिल में कन्वर्ट कर दो, ड्रिल बना दो उसकी एक, और फिर पूरा अमृत वेला वो नई ड्रिल करनी है। ये भी अभ्यास किया जा सकता है, नहीं तो वही 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 योग नहीं करना है। हर दिन नया योग हो, हर दिन योग में नवीनता हो, विजुअलाइजेशन में नवीनता हो, स्थिति में नवीनता हो, संबंधों में नवीनता हो। तो ये एक बात, और लास्ट बात बताई हैंडलिंग पावर। अगर रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर है तो हैंडलिंग पावर स्वतः ही आ जाएगी, जो खुद को हैंडल कर सकते हैं वो दूसरों को भी हैंडल कर सकते हैं। ये कभी वरदान भी था, ये लास्ट किसी वरदान से लिया हुआ। तो चाहे रूलिंग पावर कहो, हैंडलिंग पावर कहो, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, पास विद ऑनर, कितने अलग 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 शब्दों का चयन वर्णन किया है बाबा ने, परंतु सबका एक ही अर्थ है। अब दो तीन बातें, स्वयं को कैसे कंट्रोल करें। गीता में दो चीजें लिखी हुई है, हे अर्जुन दो चीजों से मन को वश में कर। कौन सी दो चीजें? अटेंशन और अभ्यास। अभ्यासे न तू कौनते य वैराग्ये न च गुह्यते। अभ्यास और वैराग, प्रैक्टिस एंड डिस्पैशन, डिसइंटरेस्ट, इन दो चीजों से मन को वश में कर। तो जितना वैराग होगा मन वश में होगा, जितनी प्रैक्टिस होगी मन वश में होगा, जितना प्योर मन होगा, थर्ड पॉइंट है प्यूरिटी, जिसका मन जितना प्योर वो उतना अधिक वश में कर सकता है। फिर है विजुअलाइजेशन से मन को वश में करना है, नए नए विजुअलाइजेशन देने हैं उसको, नए योग कॉमेंट्री निर्माण करनी है, डाइवर्शन से मन को वश में करना है। मन इधर भटक रहा है उसको कोई दूसरा काम दे दो, डाइवर्ट कर दो उसका प्रवाह, चेंज कर दो पूरा। डाइवर्शन बहुत अच्छी चीज है। जैसे एक व्यक्ति है उसको किसी दूसरे व्यक्ति से इतना मोह है, मोह छूटता ही नहीं, उन दोनों के बीच में तीसरों को खड़ा कर दो ताकि उसका ध्यान उस पर चला जाए, किसी और चीज में मन लगा दो, थर्ड व्यक्ति आ जाए बीच में तो डाइवर्ट हो जाएगा माइंड। डाइवर्शन इज वन ऑफ द मेथड टू कंट्रोल द माइंड। तो प्यूरिटी, डाइवर्शन, विजुअलाइजेशन, वैराग, प्रैक्टिस, अवेयरनेस, माइंडफुलनेस, जो भी कर रहे हैं बेहोशी में कुछ नहीं करना है। जैसे अभी क्लास में बैठे हैं, संकल्प हो कि मैं बैठा हूं, बैठी हूं और ये सुन रही हूं, भोजन कर रही हूं, यहां से चल रही हूं, जो भी छोटे छोटे काम है पूर्ण होश में करने, बेहोशी में कुछ भी नहीं करना है। भोजन बना रहे, मैं ब्रह्मा भोजन बना रही हूं होश में, मैं गाड़ी में बैठी हूं होश, हर समय होश, छोटे छोटे होश के प्रयोग करने, अवेयरनेस कहते हैं इसको, माइंडफुलनेस। ये दिन भर होते रहेगा तो शाम में एक सेकंड में डिटैच्ड, इस संसार से परे होश के प्रयोग। उसके बाद में नेक्स्ट विधि है माइंड को कंट्रोल करने की, कंसंट्रेशन। अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे, उसके भी प्रयोग करने हैं। एक प्रयोग है, ज्ञान सरोवर में इतना सुंदर वायुमंडल है, किसी भी कोने में कहीं पर भी जाकर बैठना और प्रकृति की आवाजें सुनना, ये प्रयोग है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने का, आंखें बंद कर आवाज सुनना एकाग्रता से, या कोई चीज को देखना आंखें बंद करना और क्या क्या देखा उसका वर्णन करना, कॉन्सेंट्रेशन का प्रयोग है। एक नजर घुमाना, बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही है, झाड़ पहाड़ बादल, आंखें बंद करके सोचना क्या देखा, ये कोई योग के प्रयोग नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन के प्रयोग है। योग अलग कॉन्सेंट्रेशन अलग। तो इधर अगर कॉन्सेंट्रेशन की आदत हो गई, उसी तरह मुरली का एक पेज पढ़ लेना और फिर आंखें बंद क्या क्या पढ़ा याद करने की कोशिश। बहुत पढ़ना और याद कुछ भी नहीं ये ना हो, कम पढ़ना परंतु याद ज्यादा करना, इतना पढ़ना और याद बहुत करना। अभी अभी मुरली पूरी हुई, रुक जाओ, निकलो वहां से, भोजन नाश्ता कंप्लीट, मुरली आंतरिक अंदर रिवाइज हो जाए फुल, इतनी एकाग्रता से उसको सुनना है, कॉन्सेंट्रेशन पावर। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन पावर जितनी ज्यादा वो ग्रहण भी ज्यादा कर सकता है। एक बार पढ़ो बस छप जाए, ऐसा माइंड को स्ट्रांग बनाना है। बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा सा पढ़ा इधर से बस ऐसे घुमाए नजर और इधर फिट होगा, नहीं छोटा सा काम है हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेशन, तो ऐसी बहुत सी मेथड है मन को वश में करने की, और सबसे बड़ी मेथड है मन मना भाव, भगवान में लगा दो अपने आप ही वश में हो जाएगा, सर्व संबंध छोड़ दो वश में हो जाएगा, आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करो वश में आ जाएगा, आत्मिक स्वरूप से देखो वश में आएगा, पॉजिटिव संकल्प दो वश में आएगा, स्वमान का अभ्यास करो वश में आएगा, ज्ञान का चिंतन करो वश में आएगा, गहन अध्ययन करो वश में आएगा, बिजी कर दो स्वयं को पॉजिटिव कार्य में क्रिएटिविटी में वश में होगा, सेल्फ हिप्नोसिस अफर्मेशन, ये सारी मेथड्स है मन को वश में करने की। खुद ही को संकल्प देना, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, और सीखते रहना, हर एक से सीखते रहना कुछ ना कुछ। जो भी व्यक्ति सामने आए ये सोचना इसमें दो विशेषताएं हैं जो मुझे इससे लेनी है, क्या सोचना, इस व्यक्ति से मुझे दो चीजें सीखनी है, वो ढूंढना बारीकी से क्या है उसमें ऐसे दो चीजें, परिचित अपरिचित, ज्ञानी अज्ञानी कोई भी। तो इस तरह रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, पास विथ ऑनर, पावरफुल ब्रेक, पावरफुल योग, पावरफुल बर्थ कंट्रोल, हैंडलिंग पावर, शीतलता की शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सेकंड में फुल स्टॉप। कितने सारे इंग्लिश शब्दों का प्रयोग है मुरली में। तो इस तरह मुरली का चिंतन करना, होमवर्क निकालना और मनन करते करते मगन हो जाना। ओम शांति।